پروفیسر ڈاکٹر مسعود صادق صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں بچوں کے دل کے امراض کی علاج معالجے میں آپ کافی اہم کردار ادا کر رہے ہیں, تو یہ بتائیے گا کہ کیا صورتحال ہے پاکستان میں؟
دیکھیں, پاکستان میں ابھی تو بہت بچے دل کی بیماری کے ساتھ ہیں. ہر سال جو اضافہ ہوتا ہے اس تعداد میں وہ تقریباً 30 سے 40 ہزار ہے, کچھ اندازے کے مطابق 50 ہزار تک ہے. ہمارے پاس ایک بہت بڑا پول ہے ان بچوں کا جن کا آپریشن نہیں ہوا یا جن میں کوئی انٹروینشن نہیں ہوئی, اور وہ اب بڑے ہو رہے ہیں بچے. اور سملرلی ایون ایڈلٹس ہیں ہمارے پاس بے شمار جن میں پیدائشی دل کا نقص ہے لیکن ساری عمر ان کا علاج نہیں ہو سکا. تو اس وقت کی جو پاکستان کی پاپولیشن ہے اس کو اگر ہم دیکھیں اور ہمارا جو ہائیسٹ برتھ ریٹ ہے دنیا میں اس کو دیکھیں, تو پرابیبلی دنیا میں کچھ کوئی انڈیا اور چائنا کے علاوہ شاید ہی کوئی اور ملک ہوگا جس میں اتنی بڑی تعداد میں بچے ہوں گے دل کی امراض کے ساتھ جتنے پاکستان میں ہیں.
مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتائے گا کہ ہر سال پاکستان میں کتنے بچے جو ہیں دنیا میں آتے ہیں, اور ان میں سے کتنے بچے جو ہیں وہ دل کے نقص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں؟
دیکھیں, دنیا پوری میں نا اس کا جو شرح ہے وہ آلموسٹ یکساں ہے, جو کہ 8 سے 10 ہزار بچہ ہے, یعنی تقریباً 1% بچوں میں دل کی بیماری ہوتی ہے. تو اگر آپ کے ملک میں 40 سے 50 لاکھ بچے ہر سال پیدا ہوتے ہیں, تو تقریباً 40 سے 50 ہزار بچے دل کی مرض کے ساتھ ہر سال پاکستان میں پیدا ہوتے ہیں.
اچھا, یہ تو بہت بڑی ریشو ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو دل کے نقص ہیں یہ ان کی اقسام کیا کیا ہیں, کس قسم کے جو دل کے امراض ہیں ان کے ساتھ بچے پیدا ہوتے ہیں؟
دیکھیں, اس میں 3-4 بڑی امراض ہوتی ہیں بچوں میں دل کی. ایک تو وہ ہوتے ہیں جو آپ نے کامنلی سنا ہوگا کہ بچے کے دل میں سوراخ ہے, یہ سب سے کامن بیماری ہے. یہ اصل میں دل کے اندر ایک پردہ ہوتا ہے جس کے اندر سوراخ ہوتا ہے. یہ سوراخ دل کے اوپر والے حصے میں بھی ہو سکتا ہے, نیچے والے حصے میں بھی ہو سکتا ہے. دوسری جو کامن پرابلم ہوتی ہے وہ دل کے وال پیدائشی طور پر یا تنگ ہوتے ہیں یا لیک کرتے ہیں, تو اس سے بچے کو دل کی بیماری لاحق ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں اکٹھی بھی ہو سکتی ہیں. اور کچھ بچوں کا دل قدرتی طور پر صحیح بنتا ہی نہیں ہے, وہ مکمل نہیں ہوتا. آپ اس کو نامکمل دل کہہ رہے ہیں کہ کوئی دل کا خانہ نہیں بنا, یا دل کا پردہ سرے سے بنا ہی نہیں, یا دل کی شریانیں الٹی ہیں اور اس کے ساتھ دل میں سوراخ بھی ہے, تو اس کو ہم تھوڑا کمپلیکس ہارٹ پرابلم کہتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب, یہ جو آپ نے لاسٹ والی بتائی پرابلم جس میں دل کی شریانیں بھی الٹی ہوتی ہیں, اور آپ نے کہا کہ دل کے کچھ حصے جو ہیں وہ نہیں بنے ہوتے, کیا اس بیماری میں بچہ سروائیو کر سکتا ہے پیدا ہونے کے بعد؟
جی, بہت سارے بچے سروائیو کر جاتے ہیں. ایکچولی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ماں کے پیٹ میں ایک شریان رکھی ہوتی ہے جس کو ہم پی ڈی اے کہتے ہیں. تو وہ ماں کے دل پیٹ کے اندر تو وہ شریان کھلی ہوتی ہے, جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ شریان بند ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو کچھ بچوں کی وہ فوراً بند ہو جاتی ہے, ان کا تو انتقال ہو جاتا ہے, انلیس کہ آپ کو پہلے سے پتا ہو اور آپ اس شریان کو کھولنے کی دوائی شروع کر دیں بچوں میں. لیکن بہت سارے بچوں میں یہ کھلی رہ بھی جاتی ہے اور پھر وہ بچے سروائیو بھی کر جاتے ہیں, بعض وقت تو کافی مہینے سالوں میں بھی سروائیو کر جاتے ہیں.
تو ڈاکٹر صاحب, یہ جتنی آپ نے اقسام مجھے بتائی ہیں, کیا ان کا پیدائش سے پہلے بھی علم ہو سکتا ہے ماں کو کسی ٹیسٹ کے تھرو یا کسی بھی طرح سے؟
جی بالکل, بالکل علم ہو سکتا ہے. اور پوری دنیا میں اب تو یہ ایک روٹین بن چکی ہے, اس کو ہم فیٹل ایکو کارڈیوگرام کہتے ہیں, کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ابھی صرف 15 سے 16 ہفتے پہ پہنچ ہے, تو آپ بچے کے دل مکمل طور پہ بن چکا ہوتا ہے. ایکچولی 8 ہفتے پہ ماں کے پیٹ میں بچے کا دل مکمل بن چکا ہوتا ہے, لیکن 15 سے 16 ہفتے پہ تو آپ اس کو مکمل اس کی تشخیص کر سکتے ہیں. فیٹل ایکو کارڈیوگرافی اس کو ہم کہتے ہیں, جس کے ذریعے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کے دل میں کوئی سوراخ ہے, شریانے ہیں, کوئی مکمل دل بنا ہے یا نامکمل ہے. اور یہ دنیا میں ایک روٹین اور پریکٹس بن چکی ہے, یورپ میں یا امریکہ میں تو یہ روٹین ہے کہ پہلے جو آپ کے آبسٹریشن یا الٹراسونوگرافر ہیں وہ دیکھیں گے, اور ان کو ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہو تو وہ بچوں کے دل کے ماہر کے پاس بھیجیں گے اس پرٹیکولر ٹیسٹ کے لیے.
ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو ہم نے پیدائش کے وقت کی بات کی کہ بچے دل کے نقص کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں, بعض بچے جو ہیں وہ جیسے جیسے گرو اپ کرتے ہیں ان میں دل کی بیماریاں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں, وہ کیا ریزنز ہوتی ہیں کہ بچے بعد میں پیدائش کے بعد وہ دل کے امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں بہت چھوٹی عمر میں؟
ہاں جی, اس میں دو میجر یا بڑی اقسام ہیں بیماریوں کی. ایک جو بدقسمتی سے ابھی بھی ہمارے ملک میں یا ہمارے جیسے ملکوں میں بڑا کامن ہے, اس کو ہم گینٹھیے کا بخار کہتے ہیں, جس کو رومیٹک فیور کہتے ہیں. اس کے ساتھ بچوں کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے, سوزش ہوتی ہے, اور وہ دل کے اوپر وہ بیماری جاتی ہے جس سے دل کے وال لیک کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کو ہم رومیٹک ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں. تو یہ عام طور پر 5 سے 15 سال کی عمر کے درمیان ہوتی ہے, اور یہ بھی بڑی سیریس بیماری ہوتی ہے, کیونکہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ ساری زندگی کی بیماری ہوتی ہے. وال کو آپ ریپیئر بھی کر دیں گے, ریپلیس بھی کر دیں گے, تو وہ کبھی بھی 100% نہیں ہوتا. اور دوسری جو بیماری اس میں ہوتی ہے اس کو ہم مایوکارڈائٹس کہتے ہیں. یہ وائرس انفیکشن ہوتی ہے جو کہ بلڈ سرکولیشن کے لیے ہارٹ پہ جاتی ہے, تو وہ ایک دم سے ہارٹ کے مسل کو ڈیمیج کرتی ہے. जिससे दिल के पट्ठे जो हैं वो काम करना छोड़ देते हैं। ऐसे बच्चों का बाज़ दफ़ा तो फौरन ही इंतकाल हो जाता है, लेकिन अगर वो सर्वाइव कर जाएं तो उनको बहुत अच्छा दवाई पे रहना पड़ता है, और ये भी बहुत सीरियस पैदाइशी दिल की नुक्स के बाद बहुत सीरियस बीमारी है, जो किसी भी उम्र पे हो सकती है। एक महीने के बच्चे में भी हो सकती है, एक साल के बच्चे में भी हो सकती है, 10 साल के बच्चे में भी हो सकती है, इवन बड़ों में भी बाज़ दफ़ा हो जाती है।
तो डॉक्टर साहब, ये वायरस किस तरह से आता है बच्चों में?
ये आमतौर पर दो तीन, या तो कोई गला खराब है बच्चे का, पेट खराब हुआ है, या कोई फ्लू वगैरह हुआ है, तो कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो कि खास तौर पर दिल के ऊपर अटैक करते हैं, तो उनमें फिर ये बीमारी होने का चांस होता है। ये है रेयर चीज है, ये उतनी कॉमन नहीं है जितनी पैदाइशी नुक्स या रोमेटिक हार्ट डिजीज होती है, लेकिन हमारे मुल्क में इसका भी इंसिडेंस काफी ज्यादा है।
डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो पैदाइशी बच्चे में दिल के नक्श हैं वो किस वजह से हो जाते हैं? क्या ये मौरूसी चीज है या इसमें कोई माओ का भी कोई हाथ है कि जब वो प्रेगनेंसी में आती हैं तो कोई ऐसी एहतियाती तदाबीर नहीं करती जो एंड रिजल्ट में बच्चा जो है वो इस किस्म की बीमारी के साथ पैदा होता है?
80-90% बच्चों में तो ये हादसाती तौर पर होता है, और मेडिकल साइंस को नहीं पता कि ये क्यों होता है, लेकिन 10-20% बच्चों में जो बातें आपने गिनी है उनमें से 3-4 बड़ी बड़ी बातें ये हैं कि अगर माँ को शुगर है और वो शुगर प्रॉपरली कंट्रोल नहीं हुई। दूसरी रीजन ये हो सकती है कि पहले 3 महीने के दौरान माँ का ने कोई ऐसी दवाई ले ली हो, जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, डिप्रेशन के लिए जो खवातीन दवाई इस्तेमाल करती हैं, या बाज़ दफ़ा कुछ और भी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बच्चे के दिल पे असरअंदाज हो सकती हैं। अगर कोई एक्सपोजर हो जाए रेडिएशन का, जैसे एक्सरे है या कोई फैक्ट्री है आपके घर के करीब, या कोई और ऐसी चीज है केमिकल है, तो उस एक्सपोजर से भी बच्चे के दिल पे असर हो सकता है। वायरल इन्फेक्शन कुछ होती है, जैसे अगर बच्चों को हफाजती टीके नहीं लगे, खासतौर पर रुबेला का अगर इंजेक्शन नहीं लगा, तो अगर माँ को पहले 3 महीने के दौरान ये रुबेला इन्फेक्शन हो जाए तो वो भी दिल पे असरअंदाज होती है। तो इस तरह से कुछ चीजें जरूर हैं। अगर माँ का न्यूट्रिशनल स्टेटस सही नहीं है, अगर माँ की सेहत ठीक नहीं है और बच्चों में स्पेसिंग प्रॉपर नहीं है, तो उससे भी बच्चों में दिल की बीमारी होने का चांस नॉर्मल से ज्यादा होता है। लेकिन ये तमाम जो मैंने रीजन आपको बताई हैं, ये मिला के 10-20% बच्चों में होते हैं, बाकी 80% बच्चों में इसकी कोई रीजन नहीं होती, ये हादसाती तौर पे होता है।
ये बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर, पर्टिकुलरली पाकिस्तान के अंदर, दिल के नक्स के साथ पैदा होने वाले बच्चों के लिए क्या सहूलतें या फैसिलिटीज मौजूद हैं सरकारी सतह पे और प्राइवेट सेक्टर में?
हाँ, इंतहाई नाकाफी है जी। मैं आपसे कहूंगा कि इस वक्त पूरे मुल्क में जहां तक किसी बच्चों के हॉस्पिटल का ताल्लुक है, तो सिर्फ लाहौर चिल्ड्रन हॉस्पिटल वाहिद अदारा है जहाँ पे बच्चों के दिल के अमराज का के इलाज की सहूलत मौजूद है। बाकी 3-4 सेंटर ऐसे हैं जो बेसिकली बड़ों के दिल के अमराज के सेंटर हैं, और वहाँ पे बच्चों का भी इलाज होता है, जैसे पिंडी में आर्मी का हॉस्पिटल है, या कराची में जो कौमी अदारा है NICVD, वहाँ पे इसका इलाज है। कुछ 2-3 और सेंटर है जहाँ पे एक खास हद तक इलाज है, जैसे पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है लाहौर में, या मुल्तान में दिल का हॉस्पिटल बना है, यहाँ पे एक खास हद तक इलाज है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं है। तो अगर आप सही पूछें मुझसे, तो सरकारी सतह पे यही सिर्फ सेंटर्स हैं। प्राइवेटली 2 सेंटर्स हैं, एक कराची में आगा खान हॉस्पिटल है और लाहौर में इत्तफाक हॉस्पिटल है जहाँ पे इन बच्चों की सर्जरी होती है। लेकिन अगर मैं आपको फिगर्स दूँ कि पूरे मुल्क में इस वक्त 2-3 हज़ार बच्चों की सालाना सर्जरी होती है सिर्फ, और हमारी जो रिक्वायरमेंट है इस तरह की सर्जरी की हर साल वो 10,000 से ज्यादा है।
तो डॉक्टर साहब, आपने
कहा बेशुमार बच्चे हैं जो बदकिस्मती से इस इलाज की सहूलत ना होने की वजह से इस दुनिया से चले जाते हैं।
सही डॉक्टर साहब, आपने बताया कि मतलब एक वाहिद चिल्ड्रन हॉस्पिटल है अपार्ट फ्रॉम ऑल अदर हॉस्पिटल्स, जहाँ पे कि प्रॉपर एक यूनिट बनाया गया है इनके लिए, जहाँ पे काम बच्चों को इलाज की सहूलतें मुयसर की जा रही हैं। तो ये बताइएगा कि चिल्ड्रन अस्पताल का क्या रिकॉर्ड है, हर साल कितने ऑपरेशंस होते हैं, किस किस्म के ऑपरेशंस होते हैं, और ये बताइएगा कि वेटिंग लिस्ट कितनी लंबी है?
देखिए, इस वक्त तकरीबन हम साल में बच्चों के दिल के अमराज को आप 2 तरीके से इलाज करते हैं, एक सर्जरी के जरिए और एक इंटरवेंशन के जरिए। इंटरवेंशन ये होती है कि आप एंजियोग्राफी के जरिए बच्चों के दिल के सुराख बंद करते हैं, या उनके वाल्व खोलते हैं, या उनमें स्टेंट डालते हैं। तो जो जो ओपन हार्ट या क्लोज हार्ट सर्जरी है, वो मैं आपको पिछले साल के फिगर्स दे सकता हूँ, चिल्ड्रन हॉस्पिटल में कोई 500 के करीब हुई हैं, और जो एंजियोग्राफीज हुई हैं वो 300 के करीब हुई हैं। तो आप यूँ कह लें कि हमने 800 बच्चों का इलाज पिछले साल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में किया इस तरीके इलाज से। लेकिन जो हमारी वेटिंग लिस्ट है वो तो आप कुछ ना पूछें, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से रेफरल है, हर हफ्ते उस वेटिंग लिस्ट में 25 से 30 बच्चे मजीद शामिल हो जाते हैं और इस वक्त हमारी वेटिंग लिस्ट 3000 से ज्यादा है।
और जो लेट्स सपोज अगर कल आपके पास कोई बच्चा आया है तो उसको कितने आगे साल और इंतजार करना पड़ेगा अपनी बारी के लिए?
उसमें हम देखें प्रायोरिटाइज करते हैं बच्चों को, हम दो किस्म की हमारी लिस्ट है, एक जिसको हम इमरजेंसी लिस्ट कहते हैं, एक हमारी रूटीन लिस्ट है। जो वो बच्चे जिनको हम समझते हैं कि उनका नुक्स ऐसा है जो इंतजार कर सकते हैं उनको हम रूटीन लिस्ट पे डाल देते हैं, जो बच्चे हम समझते हैं कि इनका जल्दी ऑपरेशन होना चाहिए उनको हम इमरजेंसी लिस्ट पे डाल देते हैं। लेकिन उसमें बदकिस्मती से मसला यही है कि जो इमरजेंसी लिस्ट है वो भी सैकड़ों में है, तो बाज दफा आप चाहते हुए भी और इमरजेंसी लिस्ट पे डाल के भी उन बच्चों का उस टाइम फ्रेम के अंदर ऑपरेट उनको नहीं कर सकते।
डॉक्टर साहब, फैसिलिटीज क्या हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, कितने मतलब आईसीयू कितना बड़ा है, कितने बेड का यूनिट है आपके पास?
देखिए इस वक्त तो जो हमारे पास एक ऑपरेशन थिएटर है बच्चों का और एक एंजियोग्राफी या कैथ लैब है और 10 बेड्स का हमारे पास आईसीयू है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अभी जो हमारी नई बिल्डिंग बनी है चिल्ड्रन हॉस्पिटल की वो अभी ऑपरेशनलाइज नहीं हुई, क्योंकि अभी उसका जो बिल्डिंग बन गई है लेकिन उसका अभी इक्विपमेंट नहीं आया। आई होप कि अब ये नई गवर्नमेंट बनने के बाद इंशाल्लाह हमें ये जल्दी ऑपरेशनलाइज हो जाए अगले 4 से 6 महीने में, तो उसमें हमें 2 मजीद थिएटर मिल जाएंगे बच्चों के हार्ट सर्जरी के लिए और 10-10 बेड के 2 आईसीयू मिल जाएंगे। तो अगर वो दोनों भी हमें मिल जाते हैं और वो आईसीयू भी मिल जाते हैं और हम इतनी मैन पावर भी इसके लिए बहुत ही हाईली स्किल्ड आपको मैन पावर चाहिए होती है, नर्सेज, परफ्यूजनिस्ट, आपको डॉक्टर्स, सर्जन, तो अगर ये सारा कुछ हम कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि इस नंबर को हम एटलीस्ट डबल तो कर सकते हैं, अगर 3 गुना नहीं कर सकते तो।
ठीक हो गया। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हुकूमत को मजीद इसमें क्या करना चाहिए इस चीज को इम्प्रूव करने के लिए, बच्चों की जो इलाज की सहूलतें हैं उनको मजीद बेहतर बनाने के लिए?
देखिए इसमें थोड़ा सा ना प्रायोरिटी का इशू आएगा। हम इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं कि एक ऐसा मुल्क जिसमें के लोग हंसे से बच्चे मर रहे हों, जब आप ओपन हार्ट सर्जरी की बात करेंगे तो लोग प्रायोरिटी की बात करेंगे कि जी हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि गधा गाड़ी भी चलती है और हवाई जहाज भी चलता है। आप ये तो नहीं इंतजार करते कि जी जब तक सब लोग गाड़ी पे नहीं बैठेंगे उस वक्त तक हमने जहाज नहीं चलाना है। तो आई थिंक कार्डिक सर्जरी तो होनी है और ये बच्चे और इन बच्चों का, ये हमारे पाकिस्तानी बच्चे हैं, इनका हक है कि इनको मिलना चाहिए। तो इसमें 2 तरह से मेरी नजर में होना चाहिए, कुछ शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं कुछ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस हैं। देखिए इसमें 1-2 चीजें मैं कहना चाह रहा था। एक तो ये है कि हमें पाकिस्तान में एक और चीज जिसकी जरूरत है वो अवेयरनेस की जरूरत है, कि ये अवेयरनेस 2 लेवल पे होने की जरूरत है, एक प्राइमरी लेवल पे एक सेकेंडरी लेवल पे। इवन हमारे जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट या जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं उनको भी बच्चों की दिल की बीमारियों के बारे में बहुत ज्यादा आगाही नहीं है। हम कोशिश तो जरूर करते हैं कोर्सेज के जरिए या अदरवाइज, लेकिन उस पर भी काफी काम होने की जरूरत है। पब्लिक को भी बहुत आगाही की जरूरत है, जैसे अब आजकल खसरे की वबा फैली हुई है तो उसमें एक पब्लिक कंपेन की जरूरत है कि जी आप लोगों को बताएं कि खसरा क्या होता है, कैसे बचना है, क्या करना है। इसी तरह से दिल की बीमारियों के बारे में भी लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है। इसके बारे में बेशुमार मिसकॉन्सेप्शन हैं और उनको उनकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। और दूसरा ये है कि मैं ये स्ट्रांगली फील करता हूं कि जब तक ये बच्चों की दिल की बीमारी हमारी किसी नेशनल पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेगी, मुझे तो लोग जब मैं किसी से बात करता हूं तो वो कहते हैं जब तक किसी सदर या वजीर आजम या वजीर आला के बेटे या बेटी या पोते पोती को दिल की बीमारी नहीं होगी उस वक्त तक तुम्हारा इंस्टीट्यूट नहीं बनेगा। तो आई डोंट नो कि ये बात कहाँ तक सच है और ऐसे ही होगा या नहीं, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह की जात से पूरी उम्मीद है कि we will succeed one day inshallah in achieving what we really desire and what people of Pakistan deserve.